स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 26 अप्रैल और दिन शुक्रवार। श्रीलंका में मरने वालों की संख्या 100 कम हो गई, सरकार ने कहा गिनती में गलती हुई।
There's no obligation on airlines to bring people home early in a situation like this, but I do know.
पंजाबी गायक और दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हंस राज हंस से खास बातचीत।
मैं अब स्टार गायिका हूँ, मैं तो 10-12 साल से काम में लगा हुआ हूँ पार्टी के लिए, पूरे इंडिया में प्रचार करता था, कभी गुजरात कभी तेलंगाना गया हुआ था।
दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर नूह के निवासी आज भी पानी के लिए तरसते हैं।
4-5 दिन होगा आज पानी आया, बूंद पानी ना है घर में, हाँ क्या पीवे, कहीं से नहावे, कहीं से जुम्मा पढ़े, कहीं से रोजा रखे,
और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। श्रीलंका सरकार ने रविवार को ईस्टर पर हुए सिलसिलेवार धमाकों में मरने वालों की संख्या में संशोधन किया है और मृतकों का आंकड़ा 100 से अधिक घटा दिया है। श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक धमाकों में मरने वालों की संख्या 253 है। इससे पहले सरकार ने मरने वालों की संख्या 350 से अधिक बताई थी। अधिकारियों के मुताबिक शवों की संख्या की गिनती में गलती की वजह से ऐसा हुआ। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और पूर्वी शहर बट्टिकलोवा में आत्मघाती हमलावरों ने होटल और चर्च को निशाना बनाया था। इन धमाकों में सैकड़ों लोग घायल हुए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कर्मचारियों के लिए टैक्स में भारी कटौती का वादा किया है। मैक्रों ने पिछले दिनों हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद ये कदम उठाया है। मैक्रों ने पेरिस में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि टैक्स में कटौती की भरपाई के लिए कर्मचारियों को कुछ अधिक समय तक काम करना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोई बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं करेगी। मैक्रों ने कहा,
On l'a tous entendu, un profond sentiment d'injustice. Injustice fiscale,
हम सभी ने कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में सुना है, आर्थिक अन्याय, क्षेत्रीय अन्याय और सामाजिक अन्याय। ये भावनाएं हैं और हमें इनका जवाब तलाशना होगा। इसके अलावा हमारे साथियों की ये भी शिकायत है कि उन्हें संस्थाओं से उचित सम्मान नहीं मिलता। लेकिन जनप्रतिनिधियों को यह भी देखना होगा कि विश्वास में ये कमी क्यों आ रही है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। किसी भी चीज़ को बनाना तब तक मुश्किल है जब तक कि वहाँ विश्वास न हो, और लोग जो फैसले करते हैं उसके मामले में तो ये और भी अहम हो जाता है। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान और वरिष्ठ अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहेंगे। गुरुवार को मोदी ने बनारस में एक बड़ा रोड शो किया था और गंगा आरती में भी हिस्सा लिया था। सूडान की राजधानी खार्तूम में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर नागरिक शासन की बहाली की मांग की। सैन्य परिषद के 3 विवादित सदस्यों के इस्तीफे के बावजूद लोगों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी इन 3 जनरलों को हटाने की मांग कर रहे थे। सूडान में राष्ट्रपति उमर अल बशीर तख्तापलट के बाद सूडान मिलिट्री काउंसिल ने सत्ता अपने हाथ में ली थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, प्रदर्शन में शामिल एक 15 साल की किशोरी कह रही थी कि ये सूडान के पेशेवर संघों और सेना की जिम्मेदारी है कि वे देश में किसी तरह का विभाजन होने से रोकें। हम ऐतिहासिक लम्हे में हैं और कोई भी फैसला सूडान की कमर तोड़ सकता है। प्रदर्शन में शामिल 33 साल की एक अन्य महिला का कहना था कि हम एक अच्छी सरकार चाहते हैं, ऐसी सरकार जो आपको आपके मजहब, उम्र या अन्य किसी निजी हैसियत से न आके लोगों को उनके काम के हिसाब से परखा जाना चाहिए। ये थे खार्तूम में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दुनिया भर के 30 से अधिक देशों के नेता चीन की राजधानी बीजिंग में इकट्ठा हो रहे हैं। बीजिंग में चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर दूसरा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हंगरी, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत कर चुके हैं। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका بی بی سی ہندی کے کارکرم نمسکار بھارت میں میں ہوں اقبال احمد۔ آج ہے اپریل کی 26 تاریخ اور دن ہے شکروار، اور اس وقت بھارت میں بج رہے ہیں 6:34:45۔ پردھان منتری نریندر مودی آج اپنا نامینیشن فائل کریں گے وارانسی سے، لیکن کارکرم کی شروعات کرتے ہیں شری لنکا سے۔ شری لنکا سرکار نے رویوار کو ہوئے بم دھماکوں میں مرنے والوں کی سنکھیا میں سنشودھن کیا ہے اور مرنے والوں کی تعداد 100 گھٹا دی ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ قریب 350 لوگ مارے گئے ہیں، لیکن اب شری لنکا کے سواستھ منترالے کے مطابق دھماکوں میں مرنے والوں کی سنکھیا 253 ہے۔ بی بی سی سنواداتاؤں کی بھیجی رپورٹ کا سار سنیے دینیش اپریتی سے۔
پہلے سری لنکا سرکار نے کہا تھا کہ مرنے والوں کی سنکھیا 350 سے ادھک ہے، لیکن اب سواستھیہ منترالے نے مرتکوں کا آنکڑا گھٹا کر 253 کر دیا ہے۔ سری لنکا کے اپرکشا منتری روان وجے وردنے نے کہا کہ مردہ گھروں نے مرتکوں کا غلط آنکڑا بتایا تھا۔ سواستھیہ وبھاگ کے ایک ادھیکاری نے سماچار ایجنسی رائٹرس کو بتایا کہ دھماکوں میں کئی لوگوں کے شو چھت وچھت ہو گئے تھے، اسی لیے مرتکوں کا سٹیک آنکڑا دینے میں مشکل ہوئی۔ منترالے نے کہا ہے کہ گروار کو سبھی شووں کے پوسٹ مارٹم کا کام پورا ہو گیا اور اس میں پایا گیا کہ کئی لاشوں کو ایک سے ادھک بار گن لیا گیا تھا۔ اس بیچ بریٹین کے ٹریول ایجنٹس کی ایسوسی ایشن نے سری لنکا میں موجود اور وہاں جانے کی تیاری کر رہے برطانوی ناگرکوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایسوسی ایشن آف برٹش ٹریول ایجنٹس کے سین ٹپٹون نے کہا،
There's no obligation on airlines to bring people home early in a situation like this, but I do know they try their best.
ایسے حالات میں ایئرلائنز پر لوگوں کو گھر واپس لانے کی بادھیتا نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ گراہکوں کی جتنی سمبھو ہو سکے اتنی مدد کریں گے۔ اگر آپ اگلے کچھ دنوں میں سری لنکا جانے کی یوجنا بنا رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ اسے کچھ دنوں کے لیے ٹال دیں، ٹور آپریٹر اس کے لیے آپ کو وکلپ دیں گے یا وہ آپ کو کسی دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے پیسے واپس چاہیے تو وہ اسے آپ کو لوٹا دیں گے۔ یہ تھے برٹش ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن سے جڑے ٹپ ٹون کے شبد۔ سری لنکا میں رویوار کو ایسٹر پر ہوئے سلسلے وار دھماکوں کے بعد استھتی اب بھی گمبھیر بنی ہوئی ہے۔ سرکشا کرمیوں نے سندگھوں کے خلاف ابھیان چھیڑا ہوا ہے اور اب تک 70 سے ادھک لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن حملوں کے پیچھے مقصد کو لے کر استھتی اب بھی کنتو پرنتو بنی ہوئی ہے۔
اور اب بات لوک سبھا چناؤ کی۔ دیش میں چل رہے لوک سبھا چناؤوں میں نیتاؤں کی ریلیوں اور روڈ شو کا دور لگاتار جاری ہے۔ کل پردھان منتری نریندر مودی نے اپنے سنسدیہ کھیتر بنارس میں روڈ شو کیا، تو وہیں کانگریس نے بھی بنارس سے اپنے پرتیاشی کی گھوشنا کر دی۔ اور کیا کچھ چلا کل چناوی گلیارے میں بتا رہے ہیں بی بی سی سمواداتا نوین نیگی۔
کل چناوی گلیاروں کی ہلچل کانگریس کے بنارس سے اپنے پرتیاشی کے نام کی گھوشنا کے ساتھ شروع ہوئی۔ کانگریس کارکرتا امید لگا رہے تھے کہ بنارس سے کانگریس مہا سچیو پرینکا گاندھی کو ٹکٹ ملے گا، لیکن کانگریس نے تمام قیاسوں کو دور کرتے ہوئے اجے رائے کو بنارس کا ٹکٹ تھمایا۔ پرینکا گاندھی کو بنارس سے چناوی میدان میں نہ اتارنے کے سندربھ میں کانگریس پروکتا راگنی نائک نے پریس وارتا کر یہ جانکاری دی۔
ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پردیش کو، پورے دیش کو پرینکا گاندھی جی کے نیتریتو کی ضرورت ہے۔ وہ پربھاری ہیں اتر پردیش کے ایک بہت بڑے حصے کی، وہاں پر ہم زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر جیت سکیں۔ ان کا پربھاو، ان کا نیتریتو راجنیتی میں جس سرلتا اور سہجتا کو وہ لے کر آئی ہیں، اس سے ووٹر پربھاوت ہوں، ہم اس پورے بڑے علاقے میں جیتیں۔ اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ اجے رائے جی جو پچھلی بار بھی لڑے تھے، انہیں ایک بار پھر موقع دیا گیا ہے۔
کل دن بھر بنارس چرچا کا کیندر بنا رہا، اس کی وجہ وہاں نریندر مودی کا روڈ شو تھا جو کہ دوپہر لگ بھگ 3 شروع ہوا۔ پردھان منتری مودی نے 80 گھاٹ پر گنگا آرتی کی اور اس کے بعد جنتا کو بھی سمبودھت کیا۔ بنارس کی سڑکوں پر اترنے سے پہلے مودی بہار میں تھے، جہاں انہوں نے 2 دربھنگا اور باندا میں ریلیوں کو سمبودھت کیا۔ دربھنگا کی ریلی میں مودی نے لوگوں سے راشٹرواد کے نام پر ووٹ مانگا۔ انہوں نے کہا کہ دیش میں کچھ لوگوں کو بھارت ماتا کی جے سے دقت ہوتی ہے۔
کچھ لوگوں کو اس سے سمسیا ہے، بھارت ماتا کی جائے اور وندے ماترم سے دقت ہے۔ کیا ایسے لوگوں کی ضمانت جبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟
مودی کے روڈ شو سے اتر اتر پردیش کے کنوج میں مہا گٹھ بندھن کی ریلی ہوئی۔ कन्नौज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी के लिए वोट मांगा और जनता से कहा कि कन्नौज के साथ उनका बहुत खास रिश्ता है।
लोग कहते हैं कि जिनकी शादी हो जाती है उनकी तकदीर खुल जाती है। कन्नौज की जनता से कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, हमारा आपका बहुत गहरा रिश्ता है, हमारा आपका डिंपल वाला भी रिश्ता है। और अगर हम हमारी पत्नी डिंपल हैं अगर, तो हम जितना इसने उनसे करते हैं उससे ज्यादा इसने अपनी कन्नौज की जनता से करते हैं।
इसी रैली में गठबंधन का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी मौजूद थीं। उन्होंने अपने भाषण में भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया
कि कांग्रेस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है।
उत्तर प्रदेश में जहां मायावती कांग्रेस की घोषणा पर सवाल उठा रही थीं, तो वहीं राजस्थान के कोटा में चुनावी रैली कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सालाना 72,000 रुपए देंगे।
मोदी जी ने लाखों बैंक अकाउंट खोले हैं, उसी बैंक अकाउंट में मैं पैसा डालना चाहता हूँ, उन्हीं के खोले हुए बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूँ। अच्छा तो बताइए 72,000 कितने लोगों को, 72,000 कितने समय में, 72,000 20 साल में, 15 साल में, 30 साल में या एक महीने में, 72,000 रुपए साल के, 360,000 रुपए 5 साल के, 25 करोड़ लोगों को।
इन सब के बीच कल आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली में गठबंधन ना बनने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और जनता से एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को वोट डालने की अपील की।
आज इस पोजीशन के अंदर हैं कि आज 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी मेहनत करके हमारे कार्यकर्ताओं की मदद से टक्कर देके 7 सीटों के ऊपर बीजेपी को हरा सकती है, तो मैं 7 सीटों पे लड़के भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पे हराना चाहूंगा।
आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बनारस में चुनावी हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री मोदी अपना नामांकन भरेंगे।
तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से नामांकन भरेंगे, हम बनारस भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपने ये भी सुना कि प्रियंका गांधी के बारे में जो अटकलें चल रही थी कि क्या वो वाराणसी से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी या नहीं, तो अब ये फैसला हो चुका है कि वो नहीं होंगी, क्योंकि कांग्रेस से अजय राय होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया, यही सवाल पूछा हमारे साथी अभिमन्यु कुमार साहा ने वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी से।
बनारस के मैदान में प्रियंका को उतारने का सवाल सिर्फ एक सनसनी सी मचाने के लिए था, कोई गंभीर सवाल कांग्रेस की तरफ से नहीं हो सकता था, ऐसा पहले से समझा जाना चाहिए था। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी अपनी राजनीति, चुनावी राजनीति की शुरुआत करेंगी, तो वो मोदी से लड़कर तो नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि कई संभावनाओं के बाद भी उनकी जीत की उम्मीद नहीं की जा सकती, मतलब मोदी की पराजय की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती।
प्रियंका ने खुद भी कहा था कि यदि पार्टी ऐसा तय करती है तो हम वो चुनाव बनारस से लड़ सकते हैं।
दरअसल ये बातें तब चल रही थी जब प्रियंका को महासचिव बनाया गया और उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और वो प्रचार करने निकली, तो उनसे सीधा सवाल किया गया कि आप चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा पार्टी कहेगी तो लड़ेंगी। पहली बार ही थी, बनारस कहीं भी नहीं था उसमें, बल्कि एक शुरुआत में अगर आपको ध्यान हो तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी शायद सोनिया इस बार चुनाव न लड़े और प्रियंका रायबरेली से लड़ेगी। बाद में ये हुआ कि जब प्रियंका प्रचार पर निकली, प्रियंका ने भीड़ खींचनी शुरू की, तो हर जगह उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगी, क्या आप चुनाव लड़ेंगी।
सर, यदि प्रियंका को मान लीजिए वहाँ से कांग्रेस उतारती तो क्या कांग्रेस को कुछ फायदा भी मिलता क्या?
निश्चय रूप से कांग्रेस को फायदा मिलता, क्योंकि उनका वोट परसेंट बढ़ता, क्योंकि प्रियंका के कुछ समर्थक और शुभचिंतक और कुछ आकर्षण के नाते प्रियंका को वोट देते, जितने अजय राय को नहीं देंगे उससे वोट उनके दोगुने हो जाएंगे, लेकिन जीत के आसार तो नहीं बनते। दूसरा, पूर्वांचल के जो बनारस के आसपास की जौनपुर, मऊ, आजमगढ़ वगैरह की जो सीटें हैं, इस इलाके में भी थोड़ा सा हाइप क्रिएट हो सकता था, लेकिन ये कितनी बड़ी कीमत होती प्रियंका को लड़ाना और इस हाइप के लिए कांग्रेस कितनी बड़ी कीमत चुकाती, ये सोचने की बात थी।
इस चुनाव के बाद प्रियंका गांधी का राजनीति में भविष्य किस तरह से देखते हैं आप?
जो स्थितियां बन रही हैं उसमें लगता है कि प्रियंका अब राजनीति में और सक्रिय होंगी आने वाले दिनों में, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो राहुल की जगह लेंगी। जैसे एक मीडिया में एक काफी समय से ये चलता रहा है, पब्लिक इमेज भी, कि राहुल की तुलना में प्रियंका ज्यादा स्वाभाविक नेता लगती हैं, इंदिरा गांधी के करीब लगती हैं, उनमें मास अपील ज्यादा है, ऐसा विमर्श होता रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल को पीछे करके प्रियंका आगे निकल जाएंगी, ऐसा अभी नहीं लगता। लेकिन वो राहुल की मददगार के रूप में राजनीति में मौजूद रहेंगी और आने वाले दिनों में उनका दखल राजनीति में बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी। और अब चलते हैं बनारस, जहां हमारे सहयोगी सलमान रावी इस वक्त टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सलमान, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करेंगे, कैसी तैयारी है शहर में?
देखिए, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं होगी आज कल की तुलना में, क्योंकि अपने मापदंड होते हैं चुनाव आयोग के। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब वो पर्चा भरने जाएंगे अपना, तो एनडीए के बड़े नेता उनके साथ होंगे, खासतौर पर जो पार्टी के मंत्री हैं अभी मौजूदा सरकार में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तो रहेंगे ही उनके साथ। खबर मिल रही है कि संभावना है उद्धव ठाकरे की आने की यहाँ, और एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं उनके भी जो नेता हैं वो भी आएंगे, तो ये भी एक मेगा
शक्ति प्रदर्शन ही होगा। जी,
शक्ति प्रदर्शन तो होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा जितना कल हुआ था,
जाहिर है,
एक दिन पहले।
तो सलमान, कल आप वहां मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, कहा जा रहा है कि 6-7 किलोमीटर लंबी लाइन थी, तो बहुत कम वक्त है चूंकि हम लोगों के पास, तो आप अगर अखबार आपके पास हों तो उनको वहाँ के स्थानीय अखबारों ने कैसे कवर किया है, और प्रियंका गांधी का चुनाव न लड़ने का फैसला, इन दोनों को अखबारों ने वहाँ कितनी जगह दी और कैसी जगह दी है?
देखिए, वो प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ने को डोमिनेट कर गया है मोदी का रोड शो। दैनिक जागरण की सुर्खियां हैं 8 कॉलम में, मोदी के रोड शो में टूट गए सभी रिकॉर्ड, और ये भी लिखा है पेपर ने कि अपने पर फिदा काशी का, मोदी ने जीता दिल, और मदनपुरा के मुसलमानों ने भी किया जबरदस्त स्वागत, यानी गुलाब के फूल फेंककर मोदी के ऊपर जो स्वागत किया। और अमर उजाला ने लिखा है कि भक्ति और शक्ति का संगम, उमड़ा जन सैलाब, यानी वो जो गंगा आरती हुई थी उसको लेकर लिखा है अमर उजाला ने। और इसी तरह से सारे अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें अंग्रेजी अखबार की, तो मोदी हाई टाइड ऑन वाराणसी घाट विद मैजेस्टिक आरती, तो मतलब जो गंगा का जो टाइड है ज्वार, तो वो उसको उससे कंपेयर किया है इसको। और प्रियंका गांधी पर भी लिखा है अखबारों ने, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, सिर्फ ये न्यूज उसमें आई है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी।
जी, बहुत शुक्रिया सलमान आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और दिनेश सुप्रीति हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो दिनेश, दिल्ली के अखबार क्या कहते हैं ये भी बता दें।
जी इकबाल साहब, जैसे कि सलमान बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में रोड शो की खबरें तस्वीर के साथ लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। इसके अलावा एक खबर यह है कि बेंच फिक्सिंग के दावों की पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच शुरू कर दी है, और मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को फंसाने की बड़ी साजिश, और शीर्ष अदालत में बेंच फिक्सिंग के दावों की पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू कर दी है। हिंदुस्तान अखबार लिखता है कि सर्वोच्च अदालत ने कल पूर्व जज AK पटनायक की एक सदस्यीय समिति नियुक्त की, और साथ ही CBI खुफिया ब्यूरो के निदेशकों और दिल्ली पुलिस आयुक्त के को सहयोग करने का निर्देश दिया है।
बहुत शुक्रिया दिनेश आपका। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें अभी बाकी हैं। BJP ने उत्तर पश्चिम दिल्ली से लोकसभा चुनाव का टिकट इस बार पंजाबी गायक हंसराज हंस को दिया है। क्या उन्हें स्टार होने का फायदा मिला और इसी वजह से टिकट मिला? हंसराज हंस से बात की BBC संवाददाता सरोज सिंह ने।
मैं अगर ये सोचूं कि मैं स्टार था या स्टार हूं या लोगों से दूर रहूंगा, तो लोग दोबारा रिपीट नहीं करते। इसी तरह कोई बंदा पहले जब वोटिंग आप वोट्स मांगते हैं तो बैगिंग करते हैं, बाद में आप नज़र नहीं आएंगे तो लोग रिपीट नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं करेंगे।
तो आप आपको क्या लगता है, स्टार होने के नाते आपको दिया गया, और इस पीछे दिनों देखा बहुत सारे स्टार्स की एंट्री हुई, स्टार होने के नाते हंसराज हंस को टिकट मिला है या कार्यकर्ता होने के नाते मिला है?
मैं अब स्टार काहे का हूं? मैं तो 10-12 साल से काम में लगा हुआ हूं, पार्टी के लिए पूरे इंडिया में प्रचार करता था, कभी गुजरात, कभी तेलंगाना गया हुआ था, कभी हिमाचल में, हर स्टेट में जाता, राजस्थान प्रचार ही करता था।
बीच में आप कांग्रेस भी में तो?
कांग्रेस में तो कुछ दिन का ही था, वो भी सीधा बीजेपी में आना था इसलिए
थोड़ा स्टे बैक वहाँ पे किया। सुनने में आया राज्यसभा नहीं मिला था इसलिए नाराजगी की वजह से आप आ गए, क्या इसमें सच्चाई है?
जो लीडर झूठ बोलता है, टिच करता है, उसको एकदम छोड़ना चाहिए। अब बीजेपी कोई ये थोड़ी है कि कहती है आपको इस सभा मिल जाएंगे उस समय, वो मेंबर बनाते हैं, कहते काम करो, जब मौका आया दे देंगे। तो उन्होंने तो झूठ ही बहुत बोला, वो उनकी आदत है झूठ बोलते रहना।
राज्यसभा के लिए भी झूठ बोला?
अरे तो पूरी दुनिया में, आप मीडिया में, पूरी दुनिया में पब्लिसाइज कर दिया। जब मैं पेपर भरने जा रहा हूँ तो कैंसिल कर दिया। मैंने कहा ये हाई कमांड है, हाई कमांड का मसला है, हजार बार सोचे, जब सोच लिया तो फिर ऐसे क्या वो फैसला बदला जाए। भाई मैंने तो नहीं कहा था उनको मुझे भेजो कहीं राज्यसभा राज्यसभा।
तो यहाँ राज्यसभा वाली बात नहीं बनी क्या, लोकसभा क्यों?
मैंने तो कोई बात नहीं बनाना चाहता, ये भी उनका फैसला था, ये भी मेरे लीडर का फैसला। मैंने कब मांगी थी, मुझे मालिक ने बहुत कृपा की हुई है ऑलरेडी।
एक बार आप पंजाब से आते हैं, पंजाब में ही आपने चुनाव लड़ा, वहाँ हार देखा आपने, क्या लगता है दिल्ली वाले क्यों चुनेंगे आपको, वो क्यों ना मानेंगे कि आप बाहर से आए हो? आप जालंधर में भी नहीं जीत पाए तो फिर दिल्ली में क्यों जीतोगे आप?
मैं तो फाइट करता हूँ, जीतना हारना किसमें क्या है।
एक और बात आपके लिए कही जाती है, पाकिस्तान से आपका बहुत याराना है, कम से कम आप वहाँ पे परफॉर्मेंसेज और इन सब के लिए अक्सर जाते रहते हैं, क्या बतौर सांसद अगर आप बीजेपी के यहाँ चुन के आते हैं उसके बाद भी वो चीज़ याराना जारी रहेगा? साल में कितने बार जाते होंगे?
याराना शब्द क्यों यूज आप कर रहे हैं, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, पूरी दुनिया में घूमता हूँ, उसी रूटीन में पाकिस्तान भी जाता हूँ। मेरी किसी से भी नहीं दुश्मनी, किसी से दुश्मनी, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंडियन, मेरा देश मेरे लिए अहम है। मैं बहुत सालों से नहीं गया, 10 साल से उधर,
10 साल से नहीं,
बहुत साल हो गए मेरे को, इससे भी ज़्यादा साल हो गए याराने की जहाँ बात आप करते हैं, क्योंकि मेरे वतन के साथ जो देश ठीक रहेगा वहाँ मैं गाना गाऊँगा, मेरे लिए वतन है।
लास्ट परफॉर्मेंस कब थी?
बहुत साल हो गए, 6-7-8-10 साल हो गए होंगे, मैं गया ही नहीं। मन ही दुखी हो जाता है कि हम इतने अच्छे लोग हैं तो वो क्यों ऐसा बार बार ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये थे हंसराज हंस, और अब एक ख़ास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह ज़िले में आज़ादी के 72 साल बाद भी पीने का पानी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। यहाँ लोग खुद 1,000 रुपये से 1,200 रुपये देकर पानी के टैंकर खरीदते हैं। इस ज़िले के भादस और गंडूरी गांव से बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे की खास रिपोर्ट।
4-5 दिन होगा आज पानी आया, बूंद पानी ना है घर में, हाँ क्या पीवे, कहीं से नहावें, कहीं से जुम्मा पढ़ें, कहीं से रोजा रखें, जुम्मा जुमे रात का रोजा है, क्या ही सर सर की सहरी, कहीं से कपड़ा धोएं, कहीं से नहाएं, अब जो बहुत दूर से पानी आ रो है, चाह भी फट रही है, जहर कड़वो जहर पानी।
हरियाणा के नूह जिले का भादस गांव, आजादी के 72 साल बाद भी यहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। यहां पानी बेहद खारा है, इस पानी को ना पिया जा सकता है और ना ही किसी दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन और राज्य के हुक्मरानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गांव वाले पानी कैसे पिएंगे, कैसे जिएंगे, इसका इंतजाम इन्हें ही करना है। यहां पानी खरीदना पड़ता है, जिनके पास पैसे हैं उन्होंने घरों में सीमेंट के स्टोरेज बनाए हैं जिसे वे कुंडा कहते हैं, लेकिन कुछ परिवार ना तो पानी खरीद सकते हैं और ना ही कुंडा बनवा सकते हैं। ऐसे लोग मिलो दूर से पानी भर कर लाते हैं।
पानी की ये समस्या थी, पानी दूर से आता था, घर पे कोई लोग और दूसरा काम करने वाला नहीं था, इसलिए फिर पढ़ाई छोड़ दी।
ये कहानी एक गांव की नहीं बल्कि नूह जिले के नगीना ब्लॉक में सभी गांव की है। पास में एक गांव है कंडूरी, इस गांव के हालात और भी खराब है। यहाँ रहने वाले सरफुद्दीन किसान हैं। पानी की कमी के कारण इनके खेत में साल में बस एक बार सरसों की फसल होती है और उसके लिए भी वे बारिश पर निर्भर रहते हैं। कई बार लाचारी में उन्हें खेती में खारे पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है।
बारिश का इंतजार करते हैं जी हम तो, और ऊपर लवाड़ा से मांगते हैं, और जब नहीं होती है बरसात कोई टाइम बे टाइम भी हो जाती है तो फिर खारा पानी का यूज कर लेते हैं, उससे खेती बिगड़ जाती है, उसको तो बहुत ही कम यूज करते हैं। यहाँ से कभी नहीं आए इंदर जी, तो फटके ही नहीं, मेवास के नाम से नहीं आता जी।
इन गांव में पानी की कमी का एक बड़ा शिकार यहाँ के स्कूल भी हैं। स्कूल तो सरकार ने बना दिए, लेकिन बच्चों के लिए न पानी है न बिजली।
तकरीबन 1200 या 1500 की कीमत लागत में एक टैंकर मिलता है। बहुत सारे टीचर्स इकट्ठा होकर कुछ चंदा वगैरह कलेक्शन करते हैं, इस तरह से इकट्ठा करके हम बच्चों को पानी पिलाते हैं।
गांव में दो ही चीजें दिखी, पानी से भरे टैंकर और पानी ढोती हर उम्र की महिलाएं। 4 साल की ये बच्ची जो ठीक से अपना नाम भी नहीं बता पाती, वो भी पानी के घड़े भरती है। नूह का ये पिछड़ापन और पानी के लिए हर दिन का संघर्ष एक सरकार की अनदेखी का नतीजा नहीं है। साल 2004 में राज्य में चौटाला सरकार थी, उन लोगों ने रिन्यूअल परियोजना लॉन्च की। इसके बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार आई और इस योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी पेयजल योजना रख दिया गया। अब राज्य में बीजेपी की सरकार है, यानी इन तमाम सालों में सरकारें बदली, योजनाओं के नाम बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो लोगों के हालात। इस बारे में हमने यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। 12 मई को राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं, और जब देश के सामने बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, न्याय योजना जैसे वादे रखे जा रहे हैं, तो मेवात के ये गांव अपने नेता से बस साफ और ज़रूरत भर पानी मांग रहे हैं। लेकिन क्या इस बार इनकी कोई सुनवाई होगी? कीर्ति दुबे, नूह, BBC।
और अब हो चला है खेल समाचार का वक्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। राजस्थान रॉयल्स ने कल IPL 12 में कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया। राजस्थान के सामने जीत के लिए 176 रनों जैसा लक्ष्य था, जो उसने रियान पराग के 47 और जोफ्रा आर्चर के केवल 12 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से बनाए गए नाबाद 27 रनों की मदद से 19.2 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के सुनील नारायण ने 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर कोलकाता ने कप्तान दिनेश कार्तिक के नाबाद 97 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए। ये कोलकाता की लगातार 6ठी हार रही। उधर जीत के बाद राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने रियान पराग की दिल खोलकर तारीफ करते हुए कहा कि वो बेहतरीन बल्लेबाज की तरह खेले, तो जोफ्रा आर्चर ने टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया।
Rian Parag is an impressive young man. Played very composed, like a seasoned campaigner, and did a terrific job. And then some great contributions from Gopal and Archer there at the end to get us home.
आज IPL में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा।
और अब प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। श्रीलंका सरकार ने रविवार को ईस्टर पर हुए सिलसिलेवार धमाकों में मरने वालों की संख्या में संशोधन किया है और मृतकों का आंकड़ा 100 से अधिक घटा दिया है। श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक धमाकों में मरने वालों की संख्या 253 है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कर्मचारियों के लिए टैक्स में भारी कटौती का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। सूडान की राजधानी खार्तूम की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर नागरिक शासन की बहाली की मांग की है। दुनिया भर के 30 से अधिक देशों के नेता चीन की राजधानी बीजिंग में इकट्ठा हो रहे हैं। बीजिंग में चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर दूसरा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। व्लादिवोस्तोक में पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच बातचीत में ये न्योता दिया गया। एजेंसी ने यह भी कहा है कि किम ने फरवरी में वियतनाम वार्ता में एक पक्षीय रुख रखने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना भी की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की बायोपिक बाघिन के ट्रेलर पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। BBC समाचार।
तो नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे वक्त होगा और कार्यक्रम दिन भर होगा, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।